श्रवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिताश्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। आई होप आप सभी लोग सुरक्षित हैं कोरोना से। पूरे इंडिया में सब लोगों की हालत खराब चल रही है, गवर्नमेंट को भी मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। अपने अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। तो जब तक भगवत धाम नहीं गए तब तक सुरक्षित रहिए। ये जन्म निकलने के बाद तो भगवत धाम चले जाएंगे, तो ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अपने शरीर का प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इस शरीर से ही हमें भक्ति करना है। अगर शरीर को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कठिन होगा। और जिन लोगों को लगता है कि कोरोना कोई सीरियस चीज नहीं है, उनको केवल तभी तक ही ऐसा लगता है जब तक उनको नहीं होता है। जब हो जाता है तो पता चलता है कि क्या है वो, और जिनको हो चुका है उनको पता है कि जिनको हो जाता है उनको पता चलता है कि कितना कठिन है। कि एक बार अगर लंग्स तक पहुंच जाता है तो फिर बहुत कठिन हो जाता है लोगों को। बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है। हम इस्कॉन संस्था ने भी कई भक्तों को खो दिया है इसके कारण। तो इसलिए अपने आप को ट्रांसेंडेंटल मत समझिए। हालांकि हम सभी आत्मा है, परंतु आत्मा के ऊपर शरीर भी है जो कि इस भौतिक संसार का हिस्सा है। तो जो केवल पूरी तरह से आत्मा के स्तर पे हैं, वो तो सोच सकते हैं, उनके लिए तो जन्म मृत्यु की कोई समस्या नहीं है। जो उस स्तर तक पहुंच गए वो तो भगवत धाम चले जाएंगे मृत्यु के बाद भी, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। परंतु जिन जिन को ऐसा लगता है कि अभी अब उस स्तर पे नहीं है, तो अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने शरीर दिया है उनकी सेवा करने के लिए। तो इस जन्म में अच्छे से सेवा करेंगे तो अच्छा है। इसलिए खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना चाहिए। कई बार हम ओवरली ट्रांसेंडेंटल बिहेवियर करते हैं। भक्तों की आदत होती है इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, बोलते हैं हम तो शरीर नहीं है आत्मा है। और जब फंस जाते हैं फिर उनको शरीर याद आ जाता है कि हम शरीर थे। तो इसलिए ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि हम एक यूनिवर्सल गवर्नमेंट में है। ये कोरोना कोई भगवान के अपोजिट कोई शक्ति ने नहीं बनाया, भगवान ने ही बनाया। तो जिस तरह से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करना होगा। संसार में रह रहे हैं तो संसार के नियमों का पालन करना होगा। हालांकि हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है, परंतु उसके बाद भी एटलीस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम कॉशियस हैं तो फिर उतनी समस्या नहीं होती। ओके, इसीलिए हम अपनी बुक स्टार्ट करते हैं, जिस बुक का ये टारगेट है कि हम इस जन्म मृत्यु से बाहर कैसे जा सकते हैं। ये बुक एक अच्छे समय पे आई है, कोरोना की सेकेंड वेव के बीच में हम इसको पढ़ रहे हैं। इस बुक का यही टारगेट है कि कैसे कोरोना को डिफीट करना चाहिए। जन्म मृत्यु के बियॉन्ड, जन्म मृत्यु से परे क्या है और उसमें कैसे पहुंचा जाए। इस बुक के चैप्टर भी बहुत अच्छे डिजाइन है इसी तरह से। हालांकि आप लोग जो कि पहले से बहुत सारी पुस्तकें पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए फिलॉसफी हो सकता है उतनी नई नहीं होगी, क्योंकि स्मॉल बुक्स में फिलॉसफी कई बार सेम फिलॉसफी बताया जाता है, परंतु प्रेजेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग अलग है। आप लोगों ने भी ये फील किया होगा, इतनी सारी पुस्तकों में से आपने हो सकता है वो पुस्तकें पढ़ी हो जो सीक्वेंस में हम पढ़ते आ रहे हैं। कुछ को कई चीजें कॉमन आई होंगी, परंतु हर पुस्तक के टॉपिक के आधार पर उसी कॉन्सेप्ट को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि वो हमेशा अपीलिंग लगता है। तो ऊपर जिसे एक बार पूछा गया था कि आप हमेशा ये क्यों बोलते रहते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है? आप कितनी सारी किताबों में 50 बार आप ये बोलते हैं, तो इतना क्यों बोलते हैं? प्रभुपाद जी ने आंसर दिया कि इतना बोलने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। क्योंकि जब हम एक से ज्यादा बार पढ़ते हैं तो हम दिमाग में क्या सोचते हैं कि ये तो मुझे आता है, ये तो कोई नई चीज नहीं है, इसके आगे पढ़ते। तो आध्यात्मिक चीजों का लक्षण होता है जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार हमें अच्छा लगता है, और भौतिक चीजों का होता है कि हम एक बार पढ़ के सोचते हैं कि हो गया, अभी आगे कोई जरूरत नहीं। दैट मीन्स हम अपने आप को शरीर समझते हैं और हम सोचते हैं कि अभी हम शरीर के बाहर चले। इसीलिए जब ऐसे समय पर कोई शरीर को समस्या होती है तो हम लाइन पे आ जाते हैं। कई बार मैंने देखा भक्त लोग हद से ज्यादा तपस्या करते हैं, 2-3 साल के बाद जब उनका बॉडी जब बैठ जाता है तो उनकी फिर भक्ति भी नीचे नीचे चली जाती है। इसलिए बैलेंस तरीके से करने से हम शांति से शुद्ध भक्ति तक पहुंच सकते हैं। ओके, इस बुक का पहला चैप्टर है कि हम ये शरीर नहीं है, और दूसरा चैप्टर है कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो उस समय हम कैसे अब उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं और भौतिक ग्रहों से मुक्ति कर सकते हैं। छोटी सी पुस्तक है ये, 5 टॉपिक्स से रिलेटेड। पहले हम ये शरीर नहीं है, दूसरा मृत्यु के समय हमारी प्रोग्रेस कैसे हो सकती है, फिर मृत्यु के समय ऐसा क्या करना चाहिए कि भौतिक ग्रहों से मुक्ति मिल जाए, उसके बाद इस भौतिक ब्रह्मांड के परे वैकुंठ लोक जो है वहां पहुंचने का क्या तरीका है, और उस वैकुंठ लोक का वर्णन, और उसके बाद है वैकुंठ लोक में भी जो गोलोक वृंदावन है वहां पे जाके भगवान कृष्ण का संग प्राप्त करना। ये 5 चैप्टर प्रभुपाद जी की पुस्तकें इतनी अमेजिंग है, इस तरह से लिखी गई है कि व्यक्ति कोई भी एक पुस्तक पढ़ लेगा तो वो उसके लिए सफिशियंट है। हो सकता है कि ये छोटी किताब लगती है, परंतु हर किताब अपने आप में संपूर्ण मैसेज देती है। आपने भी ये चीज फील की होगी, प्रभुपाद की कोई भी पुस्तक चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई पुस्तक ऐसी नहीं है कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट चीज नहीं मिलेगी। हर पुस्तक में प्रभुपाद जी शुरू से लास्ट तक सारा मैसेज देते हैं, और वो विशेषता है आचार्य की, क्योंकि आचार्य को मैसेज जो प्रामाणिक मैसेज है वो देना इतना इम्पोर्टेंट लगता है कि वो उसको हर जगह पे बताते हैं। जैसे भगवद गीता का अंतिम मैसेज है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भुजा, मेरी शरण में आओ। आप देखेंगे भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी वहीं से स्टार्ट करते हैं कि कृष्ण की शरण प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है व्यक्ति पढ़ते पढ़ते 18 चैप्टर तक पहुंचे ही नहीं, बीच में ही छोड़ दे, तो उसको पहले से पता होना चाहिए, नहीं तो मैसेज छूट जाएगा। तो इसलिए आचार्य इस प्रकार से कार्य करते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान के शरण में आता है, थोड़ा भी वो पढ़ता है, थोड़ा भी आगे आता है, तो उसको मैसेज पता होना चाहिए। इसलिए इस्कॉन में जो नए भक्त भी आते हैं, कुछ दिन में उनको पता चल जाता है कि कृष्ण का शरण लेना है, भगवान का नाम लेना है, उनकी सेवा करनी है। उसके लिए उनको सारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये प्रभुपाद जी के पुस्तकों का एक यूनिक पॉइंट है। तो पहला चैप्टर इस प्रकार से स्टार्ट होता है, एक श्लोक है जो देहि नित्यम वध्योऽयम् देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, देह दो शब्द बताते हैं, देह और देही। देह का मतलब शरीर, देही का मतलब आत्मा। तो बता रहे हैं देहि नित्यम अवध्यो अयम, अयम मतलब यह आत्मा, यह जो आत्मा है देही है, ये नित्य है और अवध्यो मतलब इसको मारा नहीं जा सकता, कभी इसका वध नहीं होता। देहे सर्वस्य भारत, ये हे भारत, ये सभी के देह में उपस्थित होती है। आत्मा जो कि शरीर के अंदर उपस्थित होती है वो अपने आप में एटर्नल है, नित्य है, वो उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। तस्मात सर्वाणी भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि, इसलिए आपको किसी दूसरे के लिए दुख करने की जरूरत नहीं है, दूसरे के मृत्यु पर दुख करने की आवश्यकता नहीं है। सोचने से ऐसा सुनने से लगता है कि भगवान तो गलत काम करा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपको मारते रहो लोगों को, दुख करने की जरूरत नहीं। ऐसा तो कोई आतंकवादी को भी बोला जा सकता है, तुम लोगों को शूट कर दो और ये सोचो कि तुम, ये तो आत्मा है, तुमने क्या केवल आत्मा को, शरीर को ड्रेस बदल दिया। तो तो प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि इस भगवद गीता की फिलोसफी के आधार पर हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो फाइट है वो धर्म के आधार पर होनी चाहिए। धर्म के आधार पर जब क्षत्रिय फाइट करते हैं तो अधर्म को खत्म करने के लिए कई बार शस्त्र उठाना पड़ता है। जब जैसे महाभारत युद्ध को रोकने का भी प्रयास किया गया, भगवान कृष्ण स्वयं गए थे, कई लोग थे, विदुर ने भी मना किया था, मैत्रेय मुनि भी स्वयं आए थे, वेद व्यास भी आए थे, परंतु ये दुर्योधन की मिस्टेक थी कि वो कभी युद्ध को रोकना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि ये भी बोला गया था कि हो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। बचपन में रामधारी सिंह दिनकर की एक कथा, एक पोयम आती थी, महाभारत के ऊपर उन्होंने पोयम लिखी थी, तो उसमें बताया जाता था कि आधा गांव मांगा था, परंतु उन्होंने बोला था कि 5 गांव दे दो तो भी कोई, तो भी हम चला लेंगे। और दुर्योधन ने बोला था कि 5 गांव तो नहीं, सुई की नोक की बराबर की जमीन भी नहीं देंगे। और फिर भगवान खुद भी शांति दूत बन के आए थे, और दुर्योधन इतना ज्यादा दुष्ट था कि भगवान को भी पकड़ना चाहता था। उसके मन में ये प्लान था कि भगवान कृष्ण जो है, ये यही पांडवों की शक्ति है, तो इनको बंदी बना लेते हैं, इनको बंदी बना लेंगे तो फिर सब काम हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, हम लोग जीत जाएंगे। तो इसलिए ये श्लोक में जो बताया जाता है, ये धर्म के लिए हम बताते हैं, धर्म युद्ध के समय ऐसा हम बता सकते हैं, बाकी इस श्लोक का हम यूज नहीं कर सकते हैं। कि किसी को मार डाला और बोला कि हमने तो केवल ड्रेस बदल दी, कोई ज्यादा किया नहीं, जैसे आप अपनी पैंट शर्ट बदलते हैं वैसे हमने उसकी ड्रेस बदल दी, अभी उसको नई ड्रेस मिल जाएगी। अगर ऐसा ड्रेस कोई बदलेगा तो उसको जेल में फांसी की सजा दी जाएगी। इसलिए इस प्रकार की, चूंकि हमने उसको ड्रेस दी नहीं है इसलिए हम उसकी ड्रेस बदल नहीं सकते। जैसे आप किसी दूसरे के घर जाके उसके कपड़े नहीं उतार सकते क्योंकि वो कपड़े आपने उसको नहीं दिए, इसी तरह से अगर आपने कोई चीज किसी को दी नहीं है तो आप उससे वो छीन नहीं सकते। आजकल जो बोला जाता है ना मर्सी किलिंग, उसको इंग्लिश में बोला जाता है यूथेनेसिया। कुछ लोग जो बहुत खराब हालत में होते हैं उनको जबरदस्ती जहर दे के मार देते हैं, डॉक्टर्स भी इस तरह से करते हैं, परंतु वो भी वैदिक साहित्य में अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि अगर हमने किसी को जीवन दिया नहीं है तो हम उससे जीवन ले नहीं सकते। अगर हम जीवन दे, भगवान ने जीवन दिया है तो भगवान जीवन लेंगे, हमने जीवन नहीं दिया है उसको, इसलिए हम उससे जीवन छीन भी नहीं सकते। तो यहाँ से श्लोक, यहाँ से पुस्तक स्टार्ट होती है इस श्लोक से। ये दूसरे ओरिजिनली ये श्लोक दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक है, और आत्म साक्षात्कार का सबसे पहला स्तर भी है अपने आप को शरीर से अलग समझना। शरीर से अलग मतलब शरीर से ऊपर समझना। एसेंशियली हमें ऐसा समझना चाहिए कि हम आत्मा हैं और शरीर जो है वो हमारे लिए ड्रेस के जैसा है, परंतु कई बार हम जब नए भक्त नए लोगों से मिलते हैं तो वो बोलते हैं हमारे अंदर आत्मा है। तो हमारे अंदर आत्मा नहीं है, हम आत्मा है। जो लोग शरीर की चेतना में होते हैं उनको लगता है कि हम शरीर हैं, हमारे अंदर आत्मा है, जबकि भगवद गीता का सिद्धांत है कि हम आत्मा है, हमारे ऊपर शरीर है। तो हमें भी दिन में किसी समय कम हो सकता है कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए कम से कम ये विचार करना चाहिए, क्योंकि हम 24 घंटे शरीर की चेतना में ही रहते हैं। केवल जब क्लास सुनते हैं तब तो हमें ध्यान आता है कि हम आत्मा भी हैं। तो इसलिए दिन में कभी कभी प्रैक्टिस करना चाहिए इस तरह से सोचने का कि हम आत्मा है और ये शरीर हमारे लिए मशीन के जैसा है, क्योंकि वो स्तर पर पहुंचना जरूरी है। भले ही अभी हमें वो स्तर थोड़ा एडवांस लगता हो, परंतु उस स्तर पर पहुंचना आवश्यक है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो जो भक्त वीडियो खोलेंगे, वीडियो चालू रखेंगे तो अच्छा है, वीडियो चालू रख के कम से कम मुझे भी पता चलता है, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आता कि कोई क्लास में है या सो गए हैं या मोबाइल छोड़ के दूसरे कमरे
प्रभु
में
जी
चले गए
है
हैं।
क्लास में है, क्लास में है।
हाँ,
नहीं, क्लास में ही है। हाँ
क्योंकि वो पता नहीं चलता है। वीडियो चालू रखने से ये पता चलता है कि लोग कम से कम अटेंटिव हैं, नहीं तो कई बार जूम में क्या होता है कि हमने ऑडियो ऑडियो चालू ऑडियो बंद है, वीडियो बंद है, और मोबाइल कहीं पे रखा है, और हम फिर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो वो चीज पता नहीं चलती है। और फिर इंटरेक्शन भी नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कंप्यूटर की स्क्रीन से बात कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। इसलिए जब तक अर्जेंट नहीं हो तब तक वीडियो चालू रखना अच्छा है। अगर किसी को इंटरनेट की समस्या है कुछ है तो फिर चलता है, नहीं तो वीडियो चालू रखने से पता चलता है कि पर्सनल टच आता है। जैसे हम सामने क्लास में बैठते हैं तब तो हमें दिखता है कि लोग कम से कम सुन रहे हैं, परंतु ऐसे में फिर कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई देती है कि कोई है ही नहीं सुनने वाला, पता नहीं क्या चल रहा है। तो वीडियो चालू रखने की हैबिट अच्छी है, उससे सीरियसनेस भी आता है, क्योंकि जब कैमरा चालू होता है तो हमें भी सुनना पड़ता है बैठ के, हम भी सामने बैठ के सुनते हैं कि हाँ सही में क्लास सुनना पड़ेगा, इसलिए वीडियो चालू रखना हमारे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो केवल ये बोलना सफिशियंट नहीं है कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, इस फैक्ट को एक्चुअली रियलाइज करना चाहिए। हो सकता है अभी हमें आसान लगे सोचना कि ये तो बहुत आसान है, परंतु ये फैक्ट इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम इतने सारे जन्मों से शरीर की चेतना में हैं कि अभी हम भूल ही चुके हैं कि हमें कोई और तरीके से सोचना है। बाय डिफॉल्ट हमारी थिंकिंग ऐसी हो चुकी है कि हम शरीर हैं और हम आत्मा नहीं है। उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई हमें ट्रेनिंग नहीं मिला बहुत सारे जन्मों से, तो जब हमें ट्रेनिंग मिलना चालू हो रहा है तो कुछ समय लगेगा उसको एक्टिवेट करने में, उस सिस्टम को एक्टिवेट करने में, क्योंकि माइंड और कॉन्सियसनेस उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसलिए भगवद गीता में भगवान शुरू से ये चीज बताते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तकों में शुरू से ये चीज बताई जाती है कि हम आत्मा है, जिससे कि हम धीरे धीरे उस स्तर पे आए कि हम इसको रियलाइज करना चाहें। जैसे अभी अगर हम सोचें कि हम आत्मा हैं तो हम 2 मिनट में भूल जाते हैं, क्योंकि दिन भर से वही सोच चलती रहती है हमेशा। तो वास्तविकता में अगर हम सुख और स्वतंत्रता चाहते हैं और मृत्यु से बाहर जाना चाहते हैं, तो हमें उस आत्मा के स्तर को पहचानना होगा, उस आत्मा के स्तर पे आना भी होगा। जब हमारी चेतना पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी तब हम उस आत्मा के स्तर पे आ पाएंगे, क्योंकि शरीर के स्तर पे आके सुख की कल्पना करना अपने आप में एक ऐसा सपना है, पागल मनुष्य के सपने के जैसा है। कोई अगर सोचे कि शरीर के स्तर पे आके हम सुखी हो जाएंगे तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये शरीर सुख देने के लिए नहीं है। लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये शरीर सुख देने के लिए है, वास्तविकता में शरीर दुख के लिए है। कोई भी बीमारी आती है तब हमें पता चलता है कि शरीर दुख के लिए है। और वैसे भी आप देखें शरीर का कोई भी अंग जो है उसको आप देखें तो आप उसको सुख देने के ज्यादा तरीके आपको नहीं समझ में आएंगे, उसको दुख देने के बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे छोटी सी उंगली है शरीर की हाथ की सबसे छोटी उंगली, अनामिका कनिष्ठा, कनिष्ठा उंगली जो है, आप अगर सोचें उसको कितने प्रकार से सुख दे सकते हैं। बहुत मुश्किल है सोचना कि उसको कैसे सुख देंगे, छोटी सी उंगली क्या करेंगे, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। परंतु अगर आप उसको दुख देने के तरीके सोचें तो बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। उस छोटी उंगली को हम काट भी सकते हैं चाकू से, उस छोटी उंगली को हम चीरा से चीर सकते हैं, उस उंगली को हम आग से जला भी सकते हैं, उस उंगली को हम पीस कूट भी सकते हैं, उसको पंखे में भी डाल सकते हैं, मिक्सी में डाल सकते हैं, कितने तरीके से उसके ऊपर दुख हो सकता है, परंतु सुख देने के ज्यादा तरीके नहीं है। शरीर का भी यही स्थिति है, शरीर का केवल हमें इल्यूजन लगता है कि हम शरीर को दुख दे सुख दे सकते हैं, परंतु शरीर वास्तविकता में दुख देने की एक मशीन है। तो जब तक कोई व्यक्ति सोचता है कि इस शरीर से हम हमेशा सुख प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो कोई पागल व्यक्ति का सपना हो। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई काम नहीं करेंगे तो शरीर से दुख नहीं मिलेगा, परंतु ये एक दूसरा एक गलत तरीका है कि सारे काम रोकने से शरीर का दुख रुक जाएगा, क्योंकि सारे काम रोक नहीं सकते। सबसे पहली बात तो जैसे कोई सोचता है कि हम अपने माइंड को वैक्यूम में वो करेंगे, इस्कॉन में आने के पहले मैं एक फेमस बोगस बाबा के कांटेक्ट में आया था, तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि 1 घंटे तक पूरा दरवाजे रूम की लाइट बंद करके कैंडल एक दिया जला के उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर मेडिटेशन करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया था कि वही बाबा ने अपना चित्र चित्र दिया था, बोले तो मेरे चित्र के ऊपर मेडिटेट करो क्योंकि मैं हर कण में उपस्थित हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और वो बोलते थे सब कुछ सोचना रोक दो। तो मैं एक साल तक प्रैक्टिस किया, 10 महीने तक प्रैक्टिस किया लगभग, और सारे विचार रोकने का प्रैक्टिस किया, परंतु वो कभी पॉसिबल हुआ नहीं, क्योंकि हमारा मन कितनी तेजी से भाग जाता है हमें भी समझ में नहीं आता। इवन अभी क्लास चल रही है, क्लास देते समय भी मैं प्रैक्टिकली देख सकता हूँ कि मेरा मन अभी भी कहीं कहीं बीच में भाग जाता है, कोई दूसरी चीजें आ जाती है। तो क्लास सुनते समय आप लोगों ने भी ये फील किया होगा कि क्लास सुनते चलता है, कभी कभी कोई पॉइंट निकल जाता है क्योंकि हमारा दिमाग दूसरी जगह चला जाता है। तो माइंड इतना ज्यादा स्विफ्ट है कि उसको रोकना पॉसिबल नहीं है जब तक उसको लंबा ट्रेनिंग नहीं दिया जाए, जब तक उसको भगवान के चरणों में फिक्स नहीं किया जाए, या भक्ति के प्रोसेस के द्वारा उसको सत्वगुण में नहीं लाया जाए। तब तक ये बोलना इम्पॉसिबल है कि हम मन को नियंत्रित कर लेंगे या मन को वैक्यूम में लेके जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, जो लोग वैक्यूम में लेके जाते हैं उनके दिमाग में ही कुछ नहीं है, जीरो दिमाग है, कुछ आता ही नहीं है तो वो वैक्यूम वैसे ही रहेगा। जिसको कुछ आता नहीं उसके दिमाग में वैसे ही वैक्यूम रहेगा, क्योंकि वो अज्ञानी व्यक्ति है। तो इसीलिए निर्वाण का जो स्थिति है, मन को सारे कर्मों से रोकना, सारी वस्तुओं से रोकना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ऐसे जो जो फिलॉसफी है वो भी वैदिक फिलॉसफी नहीं कहलाती है, नास्तिकवाद की फिलॉसफी कहलाती है। उन फिलॉसफीज को हम उतना एनकरेज नहीं करते। एक सिंपल सॉल्यूशन है, भगवद गीता बताता है कि हम शरीर नहीं है, और ये शरीर अपने आप में सब कुछ नहीं है। ये शरीर जो कि भौतिक पदार्थों से मिलके बना है, इसके बाहर जाने से एक आत्मा भी है, और उस आत्मा का जो सिम्टम है वो चेतना है। और आत्मा अभी अपने आप को रियलाइज नहीं कर पा रही है, अभी हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि हम आत्मा है, क्योंकि अभी जो आत्मा का जो लक्षण है, कॉन्सियसनेस, चेतना, वो चेतना पूरी तरह से काम क्रोध लोभ से भरी हुई है, भोग की चेतना से भरी हुई है। तो पहला कार्य होता है कि हम अपने आप को आत्मा रियलाइज करें, उसके लिए सबसे पहला कार्य होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इस चेतना के स्तर को बदलें। हमारी जो चेतना अभी तक मैटर में डूबी हुई है, भौतिक वस्तुओं में डूबी हुई है, उस चेतना को हम भगवान की तरफ ट्रांसफर करें, ये पहला स्टेप होता है। इसलिए आपने देखा होगा वैदिक शास्त्रों में सबसे पहला स्टेप होता है श्रवणम, सुनना। कानों से जब हम सुनते हैं तो इस भौतिक संसार का वास्तविकता पता चलती है, साथ साथ ये संसार वास्तविकता में क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है और आध्यात्मिक संसार क्या है, जब उसके बारे में हम सुनते हैं तब पहली बार हमारी चेतना में परिवर्तन चालू होता है। तो पहला परिवर्तन तो ये चाहिए होता है कि ये शरीर अपने आप में सब कुछ नहीं है, और दूसरा ये परिवर्तन चाहिए होता है कि हम भी कोई बॉस नहीं है, क्योंकि हम भी अपनी हवा में उड़े रहते हैं हमेशा। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ दुनिया का, और हर व्यक्ति को मुझसे कोऑपरेट करना चाहिए, हर व्यक्ति को मेरी बात माननी चाहिए। ये हमारे इनहेरेंट ऐसा क्वालिटी होता है कि दुनिया में मैं शायद यूनिक हूँ, मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। और ये सब चेतना का दूषण है, चेतना इस प्रकार से गंदी होती है, क्योंकि इन चीजों के कारण हम भगवान को नहीं समझ पाते। इसलिए जब हम पहली बार सुनते हैं कि हम बॉस नहीं है, कई बार नए लोग आके दुखी भी होते हैं पहली क्लास में, जब सुनते हैं कि हम भगवान के दास हैं तो दुखी होते हैं कि हम तो सोचते थे कि अभी तक हम बॉस हैं, आप बता रहे कि हमें किसी का दास बनना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें आर्टिफिशियली दास बनना है, हम हैं ही दास, चाहे वो माने चाहे नहीं माने, अभी वो है ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो हमें जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे लोग भगवान कृष्ण पे आरोप लगाते हैं कि कृष्ण ने 7वें अध्याय में 10वें अध्याय में अपनी इतनी प्रशंसा की। कोई व्यक्ति अगर अपनी इतनी प्रशंसा करता है तो कितना घमंडी कहलाएगा। देखो कृष्ण अपने पूरी पूरे चैप्टर में अपने बारे में ही लिख रहा है कि मैं हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ये है वो है, तो कितना घमंडी व्यक्ति होंगे ये कृष्ण। इस प्रकार से लोग आरोप लगाते हैं, तो वो घमंड नहीं है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोले कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये देश मेरे नियंत्रण में है, तो वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो उसकी वास्तविकता है। और भगवान के केस में तो और भी जरूरी है, क्योंकि हमें भगवान के बारे में पता ही नहीं है, और कौन कौन बताएगा? अगर भगवान अपने बारे में नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? तो पिता अगर अपने बेटे को नहीं बताएगा कि पिता मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो बेटे को नहीं पता चलने वाला है। इसलिए भगवान कृष्ण अपनी सच्चाई भगवद गीता में स्वयं बताते हैं, क्योंकि वो जरूरी है हमें भगवान के बारे में जानने के लिए। इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है चेतना को, तो चेतना को शुद्ध करना। चेतना तो शरीर में पाई जाती है, क्योंकि जैसे ही चेतना शरीर से हटते हैं तो वो शरीर डेड बॉडी बन जाता है, और चेतना इस शरीर का लक्षण है। जो फिलोसफी, जैसे शंकराचार्य की फिलोसफी, बुद्ध की फिलोसफी, ये बताते शंकराचार्य इस प्रकार से बताते हैं कि शंकराचार्य एटलीस्ट ये कहते हैं कि आत्मा के सिद्धांत को मानते हैं, बुद्ध लोग तो आत्मा के सिद्धांत को भी नहीं मानते। और चूंकि वो फिलॉसफी टाइम बाउंड फिलॉसफी थी, परमानेंट फिलॉसफी नहीं थी, इसलिए वो फिलॉसफी उस प्रकार से जनरेट की गई, इसलिए वो सनातन फिलॉसफी नहीं कहलाती है, ना तो बुद्धिज्म ना मायावाद, सनातन फिलॉसफी नहीं है। उस समय उस फिलॉसफी का कुछ उपयोग था, इसलिए उसको उस फिलॉसफी का एग्जिस्टेंस आया, परंतु हमेशा के लिए एप्लीकेबल नहीं है दोनों फिलॉसफी। उन दोनों फिलॉसफी के डिटेल में डिस्कस करना हमारी आज की क्लास के स्कोप में भी नहीं है, क्योंकि वो एक अलग फिलोसॉफिकल टॉपिक है। परंतु हम ये समझ सकते हैं कि आत्मा का अस्तित्व होता है और आत्मा का अस्तित्व चेतना के द्वारा हम पता कर सकते हैं। हालांकि आत्मा को हो सकता हम नहीं देख पाए, महसूस नहीं कर पाए, परंतु हम चेतना को तो महसूस कर सकते हैं, और चेतना को महसूस करके हम समझ सकते हैं कि हम आत्मा है। जैसे कोई चीज अगर नहीं देखी जा सकती है तो उसको दूसरी चीजों के आधार पर देखा जा सकता है। जैसे हम हवा को नहीं देख पाते हैं, या मोबाइल की वेव्स को नहीं देख पाते हैं, या ध्वनि को नहीं देख पाते, परंतु उसका ये मतलब नहीं कि वो वस्तुएं नहीं है, उनको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं उनके इफेक्ट के कारण। इसी तरह से अगर हम आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं तो आत्मा के प्रभाव को तो हम देख सकते हैं चेतना के आधार पर। और साथ साथ हमें यह भी प्रयास करना होगा कि शरीर के जो भी शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं, सुख और दुख जो भी है, उसको अगर हम सहन करेंगे तो हम आत्मा के स्तर पे पीसफुली रह सकते हैं। वास्तविकता में जो भी सुख या दुख है वो शरीर से संबंधित है, और जो हम शरीर चेतना में रहते हैं तो सुख दुख हमें प्रभाव करता है। जो व्यक्ति शरीर की चेतना से बाहर रहते हैं या जितना कम शारीरिक चेतना में रहते हैं, संसार का सुख और दुख उनको उतना कम प्रभावित करता है। वास्तविकता में हम सुख के पीछे भागते हैं क्योंकि आत्मा का ये लक्षण है कि सुख को प्राप्त करना। आत्मा भगवान का अंश है और भगवान का ये लक्षण है कि सुख को प्राप्त करना, सच्चिदानंद। और भगवान का नाम भी इस प्रकार से है, भगवान का नाम कृष्ण, कृष्ण का मतलब सबसे बड़ा सुख, सुप्रीम प्लेजर्स, ग्रेटेस्ट प्लेजर, ये भगवान का नाम है। तो भगवान चूंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो भगवान के दास होने के कारण हम भी भगवान के जैसे कुछ परसेंटेज में अट्रैक्टिव है। और आत्मा सच्चिदानंद है, परंतु अभी हमारी समस्या है कि हम इस संसार में सच्चिदानंद बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आत्मा जो सच्चिदानंद है वो वास्तविकता में है, परंतु शरीर सच्चिदानंद नहीं है। शरीर क्या है? अचित, असत, अचित और निरानंद। शरीर ना तो एटर्नल है, ना ब्लिसफुल है, और ना नॉलेजफुल है। और जब हम शरीर की चेतना से बाहर आएंगे तब ही हम वास्तविकता में समझ पाएंगे कि सच्चिदानंद कहलाता क्या है, नहीं तो सच्चिदानंद शब्द को भी समझना मुश्किल है। अभी तो हम इंद्रियों और शरीर के द्वारा फंसे हुए हैं, और जिस इंद्रिय के ऊपर हम मेडिटेट करते हैं, कोई एक भी इंद्रिय के ऊपर हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा मन जो है वो हरण हो जाता है, व्यक्ति की बुद्धि का हरण हो जाता है अगर वो केवल कोई एक भी इंद्रिय के ऊपर कंसंट्रेट करता है, कोई भी एक कोई भी इंद्रिय के ऊपर फोकस करता है। इसलिए अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए एक और वस्तु का आवश्यक है, श्रवण के साथ साथ हमें कीर्तन करना चाहिए और साथ साथ इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको बताता है कि उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो व्यक्ति अगर सोचता है कि वो अगर वो स्वस्थ होना चाहता है तो उसको दोनों चीजें पालन करना होगा, डूज एंड डोंट्स दोनों पालन करना होगा। अगर डॉक्टर से बोले कि हम दवाई भी खाएंगे परंतु आपने जो मना किया नहीं खाने का वो फॉलो नहीं करेंगे, वो भी खाएंगे, तो डॉक्टर बोलेगा तो फिर दवाई लेने का कोई मतलब नहीं, आप खत्म कर दो, दवाई लेने की जरूरत नहीं। तो इसलिए हम भगवत चेतना को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए जो नियम है उसको पालन करना होगा। इंद्रियों का नियंत्रण उसमें से आवश्यक है। इंद्रियों को जो नियंत्रित करता है उसको गोस्वामी बोला जाता है, और जो इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता है उसको गोदास बोला जाता है, इंद्रियों के दास। इसलिए हमें हर ऐसे कार्य से बचना होगा जो कि हमें इंद्रियों के दास बनाने की तरफ ले जाते हैं। संसार में भोग करने की इच्छा, भगवान से अलग होकर एंजॉय करने की इच्छा, और संसार के पाप कर्म जैसे मांस भक्षण, झूठ बोलना, ये सारे जो क्रियाकलाप हैं, इन सब क्रियाकलापों से हमें दूर रहना चाहिए। जितना हम इन क्रियाकलापों को करेंगे उतना हमारी इंद्रियां एजिटेट होंगे, इंद्रियों मन एजिटेट होंगे, और अगर मन और इंद्रिया एजिटेट होंगे तो हम योग नहीं कर पाएंगे, समाधि में हमारा मन नहीं लगेगा। तो इंद्रियों का नियंत्रण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और सहन करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। टॉलरेट करना ये समझ के टॉलरेट कर सकते हैं कि इस संसार में जो चीज आती है वो टेम्परेरी होती है, वो पहले आती है, कुछ देर रुकती है, उसके बाद चली जाती है। इस तरह से अगर हम सोच के टॉलरेट करेंगे तो हम टॉलरेट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से फर्स्ट चैप्टर में ये चीजें डिस्कस की जाती है, और लास्ट में फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में बताया जाता है कि अगर कोई सबसे ऊंचे ब्रह्म भूत की अवस्था में जाता है तो उसको कृष्ण भक्ति स्वीकार करना चाहिए, और कृष्ण भक्ति स्वीकार करने के लिए श्रवण के लिए उसको श्रवण कीर्तन करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 करने से हमारी चेतना का जो गंदगी है वो साफ होने लगता है, और फिर व्यक्ति जीवन मृत्यु के बियॉन्ड अपनी आइडेंटिटी महसूस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आता है, नेक्स्ट चैप्टर डिस्क्राइब करता है कि किस प्रकार से अलग अलग तरीके से ट्रांसेंडेंटलिस्ट पाए जाते हैं। कुछ कुछ होते हैं, ये कुछ टेक्निकल नाम है, कुछ लोग होते हैं उनको हठ योगी बोलते हैं, कुछ होते हैं उनको ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी। भगवद गीता जब आप पढ़ेंगे तो इनका डिस्क्रिप्शन दिया है, शुरू के 6 अध्यायों में हठ योग, ज्ञान योग, ध्यान योग का डिस्क्रिप्शन दिया है। हठ योग मतलब अष्टांग योग बोला जाता है, ज्ञान योग मतलब शास्त्र का अध्ययन करना, और ध्यान योग जो है वो अष्टांग योग की ऊंची अवस्थाओं को बोला जाता है, और भक्ति योगी मतलब जो योग की सबसे ऊंची अवस्थाएं हैं। तो ये सभी जो है योगी रहते हैं, और ये सभी भगवत आध्यात्मिक संसार में जाने के लिए भी क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि योग का मतलब ही है भगवान से लिंक अप होने की प्रोसेस। योग का मतलब होता है जैसे आत्मा और भगवान का संबंध जिस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है उसको योग बोला जाता है, और योग सिस्टम में कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रोसेस होती है जिससे हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है। अभी हम उस संबंध को भूल चुके हैं, परंतु ये प्रोसेस है कि हम फिर भगवत धाम जाए और अपने योग से भगवान से कनेक्टेड हो, और ये कनेक्शन तब स्थापित हो सकता है जब हम मृत्यु के समय भगवान को याद करें, क्योंकि जन्म अगर हुआ है तो जन्म के साथ हमें शरीर मिल जाता है, इसके बाद जन्म के बाद बुढ़ापा आता है, बीमारियां आती हैं, परंतु मृत्यु पे एक अपॉर्चुनिटी होती है। जब हमें मृत्यु होती है तो ऑलरेडी हमारा ये ऊपर का शरीर छूट जाता है, और अगर हम पूरे जन्म में प्रैक्टिस करें कि हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हमारा जो बुद्धि है और मन है वो भी हमारा भौतिक भौतिक संसार में छूट जाएगा, और मृत्यु के बाद हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो मृत्यु एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है जिस समय हम भगवत चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमने भगवत चेतना को प्राप्त किया है तो मृत्यु के समय हम अपने आप को भगवान के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसलिए भक्तों के लिए मृत्यु कोई दुख का कारण नहीं होती है, भक्तों के लिए मृत्यु जो है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को भगवान के पास ट्रांसफर करने। इसमें भगवद गीता का श्लोक कोट किया गया है, त्वयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। इसका मतलब है त्वयाण काले मनसा चलेन, जब मृत्यु का समय आए, त्वयाण काले मतलब जब मृत्यु का समय आता है, मनसा अचलेन अपने मन से अविचलित भाव से भक्त्या युक्तो भगवान की भक्ति को, भगवान की भक्ति में अपने आप को युक्त करके योग की शक्ति के द्वारा ध्रुवो मध्य प्राणम आवेश, अपना जो शरीर की चेतना है उसको दोनों आंखों के बीच में स्थित करके, और सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, पूरी भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करें। अगर कोई ऐसा करता है तो वो परम पुरुष के दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है। भगवदगीता 8वें अध्याय का श्लोक है। तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ लास्ट थॉट, मरते समय जो हमारा विचार होता है वो विचार हम डिसाइड करता है कि हम कहाँ पे जाने वाले हैं। तो उपाध्याय जी बताते थे कि आजकल के समय में ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर पुरुष वर्ग जो है वो मृत्यु के समय अपनी वाइफ के बारे में सोचते हैं या स्त्री के बारे में सोचते हैं, तो पुरुष जो है वो स्त्री में बदल जाते हैं, क्योंकि उनसे अटैचमेंट ऐसा होता है कि जिस चीज से हम ज्यादा अटैच होते हैं वही उसी तरीके से हम पहुंच जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपने घर के पैसे में बहुत अटैच होता है, तिजोरी में बहुत अटैच होता है, जैसे प्रभुपाद जी बताते भी थे कि कुछ कुछ जो पुराने महल होते हैं जो अभी खंडहर बन गए, वहां पर बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, क्योंकि वो राजा लोगों का वहां पैसा रहता था और खजाने को वो लोग छुपा के रखते थे, तो उसी खजाने की रक्षा करने के लिए वो सांप के रूप में आते हैं। वही सब राजा लोग, बड़े बड़े राजा हैं जो अभी सांप के रूप में वहां पर रहते हैं। तो बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम मृत्यु के समय क्या सोच रहे हैं। अगर हम मृत्यु के समय ये सब कुछ भी सोचते रहेंगे, भगवान के अलावा कुछ भी बन सकते हैं, इसलिए ध्यान देना होगा। जैसे लोग कुत्ते को बहुत प्रेम करते हैं, मरते समय कुत्ते को साथ में लेते हैं, दैट मीन्स उनका चेंज होने वाला है, अगला जन्म जो है वो कुत्ते का जन्म मिलने वाला है, क्योंकि नेचर बोलता है कि आपको कुत्ता इतना अच्छा लगता है तो आपको कुत्ता ही बनना चाहिए, फिर मनुष्य बनने की क्या जरूरत है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से हम अपना जीवन जी रहे हैं, ये हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जिस जो हम जिंदगी में कल्टीवेट करेंगे वो मृत्यु के समय भी हमारे सामने आएगा, जो हम लाइफ टाइम कल्टीवेट करने वाले हैं वो मृत्यु के समय में याद आएगा। जैसे कोई स्टूडेंट 4-5 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद एग्जामिनेशन देता है, फिर डिग्री प्राप्त करता है, उसी तरीके से इस जिंदगी में भी हम जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं उसका एग्जामिनेशन हमें मृत्यु के समय देना होता है। अगर उस एग्जामिनेशन को हम पास कर जाते हैं तो भगवत धाम चले जाते हैं, अगर पास नहीं कर पाते तो इसी संसार में हम कुछ किसी अलग योनि को प्राप्त करते हैं। तो वो एग्जामिनेशन हमेशा याद रखना चाहिए। वो एग्जामिनेशन ऐसा है कि वो बाई डिफॉल्ट एग्जामिनेशन होता है, उस एग्जामिनेशन में ये भी पता नहीं चलेगा कि कब होने वाला है। जैसे अभी तो आपको पता चलता है कि 12th का एग्जाम का डेट्स आता है, गवर्नमेंट CBSE गवर्नमेंट अनाउंस करता है कब एग्जाम है ये है, परंतु उस एग्जाम का कोई डेट नहीं आएगा, एग्जाम आ जाएगा तुरंत। इसलिए हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि मृत्यु का समय किसी को नहीं पता है कि कब हो जाएगा। हो सकता बात करते करते कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, हो सकता कोई व्यक्ति रात में सोए सुबह उठे ही नहीं, तो दैट मीन्स वो ऐसा एग्जाम है कि हमेशा तैयार रहना होगा, हमेशा इतना अच्छा पढ़ाई करके रखना होगा कि कभी भी मृत्यु आ जाए हम तैयार रहें कि ठीक है भगवान का याद करने के लिए तैयार है। तो हमें सोचना होगा ये कितना ग्रेविटी वाला सब्जेक्ट मैटर है, कोई सिंपल सब्जेक्ट मैटर नहीं है। हम ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एग्जाम की कोई डेट नहीं है, वो सरप्राइज टेस्ट होता है, हमेशा जब भी होता है वो सरप्राइज टेस्ट जैसा होता है। और कम से कम जो हॉस्पिटल में जाते हैं एडमिट होते हैं उनको कुछ दिन का मौका मिल जाता है मरने के पहले, परंतु अगर कोई को हार्ट अटैक आया एकाएक या कुछ एक्सीडेंट हुआ तो कोई मौका नहीं मिलता है, जो तैयारी पहले से चल रही है उसी में एग्जाम देना पड़ता है, और फेल हो गए तो फिर अगला शरीर मिल जाएगा, पास हो गए तो भगवान के पास चले जाएंगे। इसलिए ये सब्जेक्ट मैटर जो है सामान्यतः लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि ये पढ़ाया ही नहीं जाता है, परंतु ये जिंदगी का सबसे सीरियस सब्जेक्ट मैटर है। हमारा पूरा जीवन मृत्यु के समय एग्जामिनेशन होता है। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत चिंते कलेव, जो जो सोचते हुए हम अपने शरीर का त्याग करते हैं वो हम उस अवस्था को हम निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। बंगाली में एक पोयम आती है, प्रभुपाद जी बताते थे कि दान करो धर्म करो मरते जान ले हो, जिंदगी भर आप कुछ भी करो मरते समय सब पता चल जाएगा किसने क्या किया। मरते समय जो व्यक्ति सफलतापूर्वक एग्जाम को पास कर लेता है वो सफल है, नहीं तो फिर व्यक्ति का नेक्स्ट फेल हो जाता है तो उसी क्लास में फिर से रहता है। जैसे आपने कहीं कभी देखा होगा ना कि कुछ लोग फेल होते होते एक ही क्लास में कितने साल तक रहते हैं, उसी तरीके से हम कितने लाखों जन्मों से फेल हो रहे हैं, इसीलिए इसी संसार में आज तक पास नहीं हुए, पास हो जाते तो भगवान के धाम में चले जाते। तो वो किसी को भी फेल होना अच्छा नहीं लगता, हम भी अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं कि हम डिस्टिंक्शन के साथ पास हों, टॉप नंबर पे आए, तो जीवन के एग्जाम में क्यों फेल होते हैं। जब हम सामान्य छोटे छोटे एग्जाम में हम पास होना चाहते हैं, माता पिता बच्चों को सिखाते हैं बेटा 99% आना चाहिए, तो जीवन के एग्जाम में 99% क्यों नहीं लाना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। वो सबसे सफल सबसे कठिन एग्जाम है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि जब जीवन का एग्जाम हो तो हम उसको पास कर सकते। और जो व्यक्ति भगवान को स्मरण करता है, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद यतो वीतराग, जो व्यक्ति भगवान के नाम को ओम को शास्त्र को बोलता है और संसार के अटैचमेंट से बाहर जाता है, यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जो ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस करता है, तत्ते पदम संग्रहणे पर प्रवेक्षित सर्व द्वारा संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्य अध्यात्मतः अध्यात्मनः प्राण आस्थितो योग धारण, योग में कैसे स्थित होते हैं, सारी इंद्रियों को नियंत्रण करके अपने मन और हृदय को भी नियंत्रित करके हृदय में भगवान का नाम भगवान को स्मरण करते करते योग में स्थित होना चाहिए। इस योग में जब व्यक्ति स्थित होता है उसको प्रत्याहार बोला जाता है। प्रत्याहार मतलब हमारी इंद्रियां पूरे जीवन में हमारी इंद्रियां बाहर भागती हैं अलग अलग कार्य करने के लिए, परंतु प्रत्याहार की प्रोसेस के द्वारा हम इंद्रियों को अंदर की तरफ लाते हैं, मतलब संसार से पीछे लाके भगवान की तरफ फोकस करते हैं। भगवान का नाम जब हम करते तब भी हम यही करते हैं, अपने मन को पूरे संसार की सब गतिविधियों से निकाल के भगवान की तरफ फोकस करते हैं। हमें इंद्रियों को उनके ऑब्जेक्ट से पीछे लाना होगा और भगवान के नाम में अध्यात्म में उसको प्रैक्टिस करना होगा। कानों को कान इतने सारी चीजों को सुन रहे हैं, इतने सारे साउंड्स को सुन रहे हैं इस संसार में, परंतु मृत्यु के समय हमें कहाँ सारे संसार के साउंड से उसको खींच के भगवान के नाम की तरफ लेके आना होगा। भगवान के नाम का जो साउंड है उसको सुनने के लिए लेके आना है। अगर कोई इस तरह से कर पाता है तो वो योगी डिसाइड कर सकता है कि उसको कहाँ जाना है। भौतिक संसार में बहुत सारे लोग हैं, आध्यात्मिक संसार में भी आध्यात्मिक लोग हैं, और योगी को ये सब पता रहता है। तो जो ट्रेडिशनल योगी होते हैं, जो जब वो परफेक्शन प्राप्त करते हैं तो अपनी इच्छा के आधार पर वो उन लोगों में जा सकते हैं। इसके पहले हमने पुस्तक पढ़ी थी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट, उस पुस्तक में भी ये कॉन्सेप्ट था कि योगी अपनी इच्छा से जा सकते हैं। इस प्रकार से जब वो प्रैक्टिस करते हैं, योग की प्रैक्टिस करते हैं, तो मृत्यु के समय उनके पास चॉइस होती है कि वो कहाँ पे जाना चाहते हैं। अपने इसी शरीर से हम नहीं जा सकते हैं, वो तो सिंपल है। जैसे हम अमेरिका जाते हैं, जो भी ठंडे प्रदेश है वहां जाते हैं तो हम ऊपर से अलग ड्रेस पहन के जाते हैं, जाते हैं कि नहीं? अगर कोई गर्म जगह है तो उसका अलग तैयारी करके जाते हैं। तो इसी तरह से दूसरे लोक में जाएंगे तो वहां पे जो हमें ड्रेस की जरूरत पड़ेगी उस तरीके की ड्रेस पहन के जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये वाली ड्रेस है, इस तरीके की ड्रेस है, वैसे ही दूसरे लोक में जाएंगे तो वहां पे जो ड्रेस यूज होती है वो पहन के जानी पड़ेगी। तो इसी ड्रेस पे कहीं भी जाना है, ये तो एक मूर्खता वाली चीज है। जैसे अमेरिका कोई जहाँ पे गर्म ठंडी ज्यादा पड़ती है, वहां का कोई व्यक्ति आए वो सोचे कि हम यही एकदम सब कुछ इतना मोटा ड्रेस पहन के भारत में रहेंगे गर्मी के समय में, तो मर जाएगा वो गर्मी के कारण। तो जिस जैसा देश वैसा वेश, इसी प्रकार से जिस लोक में हम जाते हैं उस प्रकार से हमें अपने बाहर का शरीर जो है उसको मेंटेन करना होता है, उस तरीके का शरीर दिया जाता है। और जो भक्ति योगी होते हैं वो वास्तविकता में ये प्रयास नहीं करते कि कोई भी भौतिक लोक में जाए, वो प्रयास करते हैं कि इस संसार के सभी लोगों से बाहर भगवान के धाम में जाए, ऐसे स्थानों में जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं पाई जाती है। जो बुद्धिमान होते हैं वो इस संसार में अपने आप को एलिवेट करने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि इस संसार में एलिवेट होने का कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारे पास ये शरीर है, भौतिक शरीर है, तब तक कहीं भी जाएंगे मृत्यु मृत्यु हमें नहीं छोड़ेगी। पर अगर हम प्रयास करते हैं भगवान के धाम में जाने का, तो हम इस मृत्यु के चक्कर से बाहर आ सकते हैं। और इसके आगे फिर आता है ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मरण। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, ओम का जप करता है, मेरे नाम का स्मरण करता है, विष्णु रूप का स्मरण करता है, वो परम पद को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु का स्मरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवद गीता बताता है 8वें अध्याय में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम, जो अनन्य का मतलब अनडिविएटेड, जो लगातार मुझे मेरी चेतना में रहता है, मुझे सोचता है, यो माम स्मरति नित्य सह, जो हमेशा मुझे सोचता है, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, तस्या हम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ, मैं बहुत जल्दी उसको प्राप्त हो जाता हूँ, नित्य युक्तस्य योगिनः। क्योंकि वो योगी हमेशा से आध्यात्मिक योग में स्थित होता है। तो अभी हमने जो देखा था अलग अलग प्रकार के योगी, उसमें से एक प्रकार के योगी होते हैं जो निराकारवाद को भी मानते हैं, तो उनके लिए भगवान ओम शब्द बोलते हैं, ठीक है आप ओम का उच्चारण करिए, क्योंकि वो कृष्ण को नहीं जानते हैं तो वो ओम का उच्चारण करते हैं। परंतु जो कृष्ण या भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो भगवान के नामों का उच्चारण करें, भगवान के बहुत सारे नाम हैं। और एक और दूसरा चीज है, जो कि निराकारवादी हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, वो आध्यात्मिक संसार में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भगवान को जानते ही नहीं है, तो भगवान के संसार में जाना उनके लिए कठिन होगा। वो भगवान के शरीर की रोशनी जो होती है ब्रह्म ज्योति, उस ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। ये ब्रह्म ज्योति उसी तरह से है जैसे सूर्य का प्रकाश है, एक सूर्य है और सूर्य का प्रकाश है, तो भगवान है, उनके शरीर से निकलने वाली ज्योति को ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। तो जो निराकारवादी ओम का उच्चारण करते हैं मृत्यु के समय, वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, और जो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं वो भगवान के धाम में जाते हैं। ब्रह्म ज्योति में जाना परमानेंट भी नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति को आनंद, आत्मा को आनंद की इच्छा होती है, ब्रह्म ज्योति में आनंद नहीं होता है, तो जब उसको आनंद नहीं मिलता है तो फिर आत्मा वापिस आ जाता है, और वापिस आके फिर इस भौतिक संसार में आनंद की तलाश करते हैं। तो इसलिए जब तक हम आध्यात्मिक संसार में नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमारी मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति का मतलब ब्रह्म ज्योति में जाना नहीं होता है, ब्रह्म ज्योति में जाने से जो मुक्ति मिलती है वो परमानेंट नहीं होती। भगवान बताते हैं कि आध्यात्मिक संसार में जो जाने से वास्तविक मुक्ति को प्राप्ति होती है। उस आध्यात्मिक संसार का डिस्क्रिप्शन आता है यहाँ पे, चिंता मणि कर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षा भूते सुसुगभिर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि आलोल चंद्र कुल सत्पन माल्य वंशी रत्नागदम प्रणय केली कला विलासम। इस तरह से ब्रह्म संहिता और बहुत सारे शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन आता है भगवान के धाम का डिस्क्रिप्शन। ये जो डिस्क्रिप्शन हमने अभी सुना, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा, भगवान के धाम में चिंतामणि है, ऐसे पत्थर हैं जिससे आप जो मांगे वो मिल जाता है। कल्प वृक्ष है, सारी इच्छाओं को पूरे करने वाले पेड़ है। लक्षा भृते सुसुरभि, सारी गाय जो है वो सुरभि गाय है। सुरभि गाय मतलब कामधेनु, कामधेनु के समान। और ऐसी लाखों लाखों गायों को भगवान चराते हैं। और लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रम सेव्यमानम, हजारों करोड़ों लक्ष्मियां वहां पे भगवान की सेवा में हमेशा स्थित होती है। ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। आलोल चंद्र क्लसत वन माल्य वंशी, उनका शरीर, उनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। और अपने वन माला अपने गले में डाले हुए हैं, वंशी को अपने होठों पे लगाए हुए हैं। और रत्नांगदम प्रलय अकेली कला विलास, और उनके पूरे शरीर डेकोरेटेड है। और प्रणय केली, एक सुंदर पुरुष के समान वो दिखाई देते हैं, उनके शरीर से आभा प्रकट होती है। इस तरह से आध्यात्मिक संसार का डिस्क्रिप्शन होता है। नेचुरली जब हम आध्यात्मिक संसार के बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो लोग आकर्षित होते हैं, और उस आकर्षण के कारण भगवान के पास, भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो चाहे हम कहीं भी रहें, ये भगवान के धाम का वर्णन, वृंदावन का वर्णन हम कहीं भी कर सकते हैं, वृंदावन का स्मरण कहीं भी कर सकते हैं। अगर हम कहीं भी रह के कृष्ण का स्मरण करते हैं, वृंदावन का स्मरण करते हैं, तो हम कहीं भी रहें, चाहे न्यूयॉर्क में, चाहे बड़ौदा में, चाहे हैदराबाद में, चाहे मुंबई में, हम वृंदावन में निवास करेंगे। इसी तरह से अगर हम भगवान को हमेशा स्मरण करते रहते हैं तो हम भगवान के धाम में हमेशा निवास करते हैं। तो अगर इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है तो हमें फिर दूसरे प्रोसेस को प्राप्त करने की जरूरत क्या है। हमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, और फिर आसानी से भगवान धाम जाना चाहिए। ना तो कोई टैक्स लगेगा, ना आपको टिकट का पैसा देना पड़ेगा, ना वहाँ पे वीजा की जरूरत पड़ेगी, ना आपको I-1 वीजा इन सब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ भगवान का नाम लीजिए और शांति से भगवान धाम, भगवत धाम वापस जाइए। ओके, दो अध्याय हमें इस प्रकार से दिया है। नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे उसमें नेक्स्ट जो तीसरे अध्याय से स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।
जी प्रभु, मुझे
यस प्रभु
सागर कृष्ण प्रभु, प्रभु जी आपने वो बताया कि जैसे डेथ कभी भी आ सकती है। जैसे आपने एक उदाहरण दिया था कि कोई इंसान अगर गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते चलाते वो उनका मृत्यु होता है, तो उस स्टेज में उनका, अगर उनके माइंड में अभी हम लोग ड्राइव करते हैं तो We can't afford to have Hare Krishna Mahamantra going in our head and we drive. स्टेज में उस टाइम फिर वो कहाँ प्राप्त होंगे, उनका उनका अगला जन्म किस तरीके का होगा?
नॉर्मली मृत्यु के समय नेचुरली वो विचार आता है हमारे मन में, जिसको हमने जिंदगी में सबसे ज्यादा कल्टिवेट किया है, मतलब जिसको हम हमेशा, जिससे सबसे ज्यादा अटैच रहे हैं, वो ही विचार आएगा मन में।
तो जैसे
ऐसा नहीं होगा कि कोई भी विचार नहीं हो, सकता हम उसको नहीं पहचान पाए, परंतु कोई ना कोई तो लास्ट विचार होगा।
जी, तो मेरा दो एक्सपीरियंस था प्रभु जी, व्हेन आई हैड दिस एक्सपीरियंस, सो व्हेन आई वेंट विद माय फ्रेंड्स फॉर द सम वाटर स्पोर्ट्स स्कूबा डाइविंग इन गोवा, एंड जैसे वो जो थे ट्रेनर, उन्होंने मेरा मुंह नीचे डाला विद ऑक्सीजन स्टफ। मैं, मुझे फोबिया है पानी का और समुंदर था उधर, तो आई हैड माय मॉम सेड पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे लगा कि मैं चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, मैं अकेला लड़का हूँ, ये सब। और दूसरा ऐसा हुआ था, एक्सीडेंट होने वाला था बट कृष्ण ने बचा लिया, और कहीं पे डिसबैलेंस होकर मैं बैलेंस हो गया, बट उस टाइम में मैं ब्लैंक हो गया था। तो मेरे ये दो एक्सपीरियंस है।
तो अगर आपने मम्मी पापा के बारे में सोचा तो आप फिर भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो भौतिक विचार है।
हाँ।
संसार में अगर हम सबसे ज्यादा अटैच होना चाहते हैं तो भगवान से अटैच होना चाहिए। हम तैयार हों कि अगर अभी भी मृत्यु आए तो भगवान को स्मरण कर पाएंगे। हम बाकी सभी से प्रेम कर सकते हैं, स्नेह कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, परंतु हमारा जो सबसे ऊंचा अटैचमेंट है वो भगवान से होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम डेंजरस लाइन में। इस्कॉन के एक भक्त थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, 20-25 साल से भक्ति कर रहे थे वो। तो उन्होंने उनका एक बार क्या हुआ, गंगा में स्नान करने गए तो उछल के कूदे गंगा में, और जो उनको उन्होंने देखा नहीं था उस समय, बरसात का सीजन था, तो जहां पे कूदे वहीं पे पत्थर था नीचे। तो जैसे ही उनका सिर पत्थर से टकराया, क्योंकि सिर के बल कूदे थे, तुरंत एकदम कोमा जैसे, मतलब बेहोश हो गए। तो 1 महीने तक वो होश में नहीं आए। 1 महीने बाद जब होश में आए तो एक भक्त ने उनसे पूछा, ऐसे मजे में जब वो सही हो गए पूरे, बाहर वापस आ गए, तो उनके एक मित्र ने पूछा, प्रभु जी आपका जब आप बेहोश होने वाले थे अंतिम विचार क्या आया था मन में? तो वो प्रभु जी शर्माने लगे, उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर 2-3 बार टाला उनसे पूछा, बार बार पूछा, तो उन्होंने बोला, एक्चुअली मैंने जब मैं 8वीं क्लास में था तो मैंने एक मूवी देखी थी, कॉमेडी मूवी, उसका एक सीन मुझे याद आ गया। इतना इतना डेंजरस है। आप सोचिए वो 20 साल से भक्ति कर रहे थे, उसके बाद भी जब वो बेहोश हुए तो अंतिम विचार जो था वो भगवान से संबंधित नहीं था। अगर उनकी मृत्यु हो गई होती तो कहाँ जाते वो? तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम लाइफ में सबसे डीप अटैचमेंट भगवान के लिए रखें। अगर कहीं और कोई और चीज रखा, दैट मीन्स हम फेल हो सकते हैं। ओके, और कोई प्रश्न है?
ये जो अपना जो बुक रीडिंग का जो चल रहा है, वो पीडीएफ वगैरह भेजते हो तो अच्छा रहता है। बहुत काफी जगह पे जो है वो बुक नहीं पढ़ सकते, मतलब एग्जांपल मेरे
पीडीएफ हम लोग भेजते हैं इसी ग्रुप में, तो पीडीएफ आता है किताब चालू होने के पहले?
नहीं है, अभी लास्ट वाला में मेरे ख्याल से नहीं आया हुआ है।
नहीं, लास्ट वाला मेरे पास है पीडीएफ, मैंने उसी ग्रुप से अभी डाउनलोड किया, जिसमें से मैं पढ़ रहा था ना क्लास में, मैंने उसी में से डाउनलोड किया। स्क्रिप्चुअल स्टडी कोर्स वाला जो ग्रुप है उसमें से डाउनलोड किया।
ये वाला अपने ग्रुप में नहीं है लेकिन?
आप क्या किस ग्रुप में है तुझे?
ये अभी जो है अपना बुक रीडिंग, प्रभुपाद बुक रीडिंग जो है ना,
उसमें भी आया होगा, क्योंकि मैं जब ये किताब चालू हुई थी तो उसमें डाला गया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों डाला था। मैंने उसी में से अभी डाउनलोड करके उसी में से क्लास दिया मैंने, हिंदी वाली बुक में से, व्हाट्सएप ग्रुप में से डाउनलोड किया मैंने।
वो अभी रिसेंड कर देते हैं उनको,
अभी सेंड कर सकते हैं तुझे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो पुस्तक चालू करते हैं तो वो पुस्तक पीडीएफ में हम भेज देते हैं ग्रुप में।
पहले का तो सब देखा था, ये लास्ट वाला नहीं नजर आया अभी, क्योंकि ये इसके लिए मैं अभी हुआ कि अभी लास्ट टाइम में कोविड का जो टेस्ट करने के लिए गया था, बहुत सुबह से गया था, 9 बजे से। अभी अंदाजा था कि 12 बजे तक नंबर नहीं आएगा, अभी यहाँ से तो चला गया, लेकिन अभी करेगा उधर क्या, तो उसी टाइम पे सोचा था अगर होता तो अच्छा था, लेकिन मैंने देखा लेकिन नहीं, नजर में नहीं आया था, हो सकता है
फिर से भेज देंगे।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस
प्रभु जी, यदि अभी कोई जुड़ना चाहता है ग्रुप में तो क्या उसके लिए कोई प्रोसेस है?
अभी जुड़ना चाहता है मतलब भगवान कृष्ण से जुड़ने का हमेशा प्रोसेस तो रहता ही है, भगवान का नाम लीजिए और जुड़ जाएंगे।
नहीं प्रभु जी, अभी जो जैसे इस ग्रुप में स्टडी के लिए जुड़ना चाहता है तो कोई जुड़ सकता है क्या बीच में? मतलब अभी हमारा कोर्स बीच में चल रहा है इसलिए मैं पूछ रही हूँ।
कितनी बुक्स बाकी हैं? शायद आपकी लास्ट बुक चल रही है ना, इसके बाद कौन सी बुक है?
आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस नहीं थी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी 7th बुक चल रहा है, और वैसे मैंने मतलब ऐसा रखा है कि अगर अभी अभी कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मतलब उनको क्या मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो पास्ट की बुक्स खुद पढ़े, या फिर वो क्या है कि अभी 7th बुक से जुड़ रही है, कोर्स के बाद फिर से ये रिपीट होगा कोर्स, उसमें वो 1st to 7th बुक्स कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा ये हमारे Level 1, Level 2, Level 3 जब कंप्लीट होगी 27 बुक्स, उसके बाद फिर से ये कोर्स जब होगा तो उसमें वो 1 to 7 बुक्स तब कंटिन्यू करके कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा रोटेशन भी रख सकते हैं, या फिर वो अगर चाहे तो अपने आप फिर से सारे पीडीएफ मिलकर कर सकते हैं।
ओके प्रभु जी।
और अगर मतलब कोर्स में एनरोल करना है तो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो, मैं ऐसा है तो मैं इस चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। ओके
और YouTube से भी कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो है, भगवान साकार है या निराकार है? भगवान दोनों है। भगवान का जो शरीर की रोशनी है वो निराकार है, और भगवान का स्वरूप जो है वो साकार है। जैसे एक बार इस्कॉन के एक सन्यासी है, उनसे एक मुस्लिम व्यक्ति मिले थे, तो उन्होंने बोला था कि आप तो भगवान के रूप को मानते हो। तो उन्होंने बोला, मुस्लिम से बोला कि आप भी तो भगवान के रूप को मानते हो। तो उन्होंने बोला कैसे मानते हैं? तो उन्होंने क्या बोला कि आप अजान करते हैं ना अल्लाह को, बात जो जो से आप खड़े होके बोलते हैं, तो आप अगर बोल रहे हैं और आप बोलते हैं कि अल्लाह सुनते हैं, तो अल्लाह कैसे सुनेंगे? अगर कान होंगे तभी तो सुनेंगे। तो वो मान गया। फिर उसने बोला कि आप सब लोग बोलते हैं कि पाप मत करो, अल्लाह ताला के दरबार में सब सब वो होगा, दैट मीन्स अल्लाह देखते भी हैं कि कौन पाप कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो अगर कोई सुनता भी है देखता भी है तो क्या उसके कान और आंख नहीं होंगे? तो मुसलमान भी मान गया। तो भगवान साकार निराकार, भगवान की जो एनर्जी है वो हमेशा निराकार है। भगवान जैसे हम देखते हैं इस संसार में भी शक्ति होती है और शक्तिमान होती है, तो शक्ति निराकार होती है, शक्तिमान पुरुष होता है। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट निराकार है, परंतु गवर्नमेंट के पीछे प्रधानमंत्री है, वो तो एक मनुष्य है जो कि उस गवर्नमेंट को हैंडल कर रहा है। तो इसी तरह से भगवान की एनर्जी है वो निराकार है, और भगवान जो है वो साकार है। तो भगवान के दोनों प्रकार के रूप है। कुछ लोग उनकी एनर्जी को पूछते हैं वो निराकारवादी कहलाते हैं, जो भगवान के शरीर जो भगवान के रूप को भजन करते हैं वो भक्ति योगी कहलाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है स्नेह के द्वारा, मेरा क्वेश्चन है कि क्या साष्टी मुक्ति में गोलोक धाम प्राप्त होता है? साष्टी मुक्ति में गोलोक धाम प्राप्त नहीं होता है। साष्टी मुक्ति वैकुंठ लोक को प्राप्त कराती है। साष्टी मतलब भगवान के जैसा ऑपुलेंस मिलता है हमें, उसको साष्टी मुक्ति बोला जाता है। ये पांचों मुक्ति जो है ये सामान्यतः वैकुंठ लोक में प्राप्त की जाती है, पर ये थोड़ा टेक्निकल भी है, इसको थोड़ा और डिटेल में समझ सकते हैं। एक प्रकार की साष्टी मुक्ति जो है वो गोलोक वृंदावन में पॉसिबल है, भगवान के जैसा ऐश्वर्य, क्योंकि सभी को भगवान के जैसा ऐश्वर्य वहां पे होता है। परंतु जब हम इन पांचों मुक्ति का डिस्क्रिप्शन करते हैं, सालोक साष्टी सामुप्य सामीप्य सारूप्य, तो इनका डिस्क्रिप्शन सामान्यतः हम नारायण के लोग वैकुंठ के लिए करते हैं। ओके, और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है।
और एक जो कंफ्यूजन है कि ये बुक रीडिंग का जो कोर्स है उसमें जो स्पिरिचुअल स्टडी कोर्स है वो वही ग्रुप है, जो दूसरा ग्रुप है प्रोपात बुक रीडिंग ग्रुप, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और कभी कभार कोर्स से लिंक्स भेजने के लिए है। वो बुक्स और वो हमारा जो टाइम टेबल है वो भेजते नहीं। तो अगर पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो वो लेफ्ट कर सकते वाले।
ओके, स्क्रिप्चुअल स्टडी वाला मेन ग्रुप है, प्रभुपाद रीडिंग वाला पहले प्रमोशन के लिए बनाया था, वही ना पहले हम जो
हाँ यस यस यस।
ओके, तो मेन ग्रुप स्क्रिप्चुअल स्टडी कोर्स वाला जो ग्रुप है वो मेन ग्रुप है, उसमें इन्फॉर्मेशन आता है।
ओके, और जो बुक्स है उसमें आती
है। या हरे कृष्णा, लवेश प्रभु आपकी मदर अभी है जो दिल्ली से ज्वाइन की थी, वो अभी है ग्रुप में कि अभी निकल गए? यस प्रभु।
हरे कृष्णा, तो आवाज आ रही है मेरी?
यस प्रभु, आवाज आ रही है।
हाँ, वो ऑनलाइन दिख तो रही है मेरे को अभी।
ओके,
कृष्णा का एक क्वेश्चन था अभी।
हाँ बताइए।
अगर हमने मरते समय कृष्णा का नाम लिया तो क्या हम लोग गोलोक वृंदावन जाएंगे?
जाएंगे। आपके पिताजी के लिए स्पेशल अकाउंट है, आपका नाम लेंगे तो भी वो गोलोक वृंदावन जाएंगे, क्योंकि आपका नाम भी कृष्ण है। ठीक है, ओके ओके प्रभु जी। तो अगला सेशन जो करेंगे उसमें नेक्स्ट तीन चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण।